कर पंडित प्रवर टोडिरमल जी कृत यह सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड नाम का ग्रंथ आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पंडित टोडिरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यहाँ अद्योपान स्वाध्याय अपना हो चुका है, उनके बारे में तो हम सब जानते ही है। कर्णान योग के वे महान विद्वान थे और उन्होंने कर्णान योग के जो ग्रंथ है गोमटसार आदि उनकी टीकाएं लिखी है जिसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ये पहला है वो जीव कांड है, दूसरा भाग है सम्यक ज्ञान चंद्रिका उसका नाम कर्म कांड है, और तीसरा भाग है उसमें लब्धि सार और क्षपणा सार दो ग्रंथ है। उन्होंने त्रिलोक सार नाम की भी रचना लिखी है, त्रिलोक संबंधी तिलोय पन्नति ग्रंथ की टीका है जिसका नाम है त्रिलोक सार। अन्य भी बहुत उनकी सारी रचनाएं है। आज से हम यहाँ ये कर्णान योग का जो महान ग्रंथ है उसका आद्योपांत स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमने जो मंगलाचरण गाया है उसमें चौथे छंद में पहले लाइन में विवि विधि हुआ है, वो विविध विधि चाहिए, ध रह गया है वहां पर, विविध विधि। हाँ, फोर्थ स्टैंजा है उसमें फर्स्ट लाइन एक क्रम से ग्रंथ मूल किसने रचा है, उसकी किसने टीका की है, पंडित टोडिरमल जी स्वयं बताने वाले ही है, क्योंकि गोमटसार ग्रंथ की रचना तो किसने की थी, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने। उनको सिद्धांत के चक्रवर्ती क्यों कहते हैं, जो चक्रवर्ती राजा होता है वो षट खंड को जीतता है, छह खंड को वो जीतता है, उसका आधिपत्य है। और ये जो षटखंडागम अपना जो मूल ग्रंथ है, षटखंडागम कर्णान योग के मूल ग्रंथ किसने लिखे थे या किसने पहले पढ़ाए थे, हाँ अश्विन भाई आपको पता है षटखंडागम की रचना किसने की थी, हाँ? दर्शन आचार्य ने तो शिष्यों को पढ़ाया भूत बलि और पुष्पदंत, और उन्होंने षटखंडागम छह खंड है उसमें बड़े बड़े ग्रंथ है उसकी रचना की। उन षटखंडागम के ऊपर बहुत सारी टीकाएं हुई, धवला है, जय धवला, महाधवला आदि। और ये जो गोमटसार नाम का ग्रंथ पंडित ने आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा, क्यों लिखा? तो चामुंड राय जो हो गए, नाम सुना है कभी चामुंड राय का? नहीं, ये यहाँ फोटो लगी है ना श्रवण बेलगोला के माँ, किसके? बाहुबली भगवान के। वो महाकाय मूर्ति 57 फुट ऊंची मूर्ति किसने निर्माण की थी? चामुंड राय ने। श्रवण बेलगोला में है, वहां हम जाते हैं यात्रा करने के लिए। तो उन्होंने इतना ही काम नहीं किया है, तो वे भी स्वयं तत्वज्ञानी थे, तत्ववेत्ता थे और कर्णान योग के भी अभ्यासु थे। उन्होंने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जो है, सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहा था? क्योंकि षट खंडागम के ज्ञाता थे, इसलिए उनसे प्रश्न पूछा। ये तो ये जीव पद आदि उसके बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा। हम जीव समास वगैरह पढ़ते हैं ना, वैसे एक जीव पद नाम का एक उसमें एक विशिष्ट विषय है। तो उन्होंने उनके लिए पूरी ग्रोमसार ग्रंथ की रचना कर दी। मूल प्राकृत में ये ग्रंथ रचना है। उसके बाद उसकी गोमटसार के ऊपर चामुंड राय ने कर्नाटक भाषा में टीका लिखी। वो कर्नाटक भाषा के ऊपर से संस्कृत में टीका केशववर्णी नाम के ब्रह्मचारी हुए थे, उन्होंने लिखी। वो संस्कृत टीका कन्नड़ लिपि में, लिपि समझती है?
स्क्रिप्ट,
स्क्रिप्ट, कन्नड़ स्क्रिप्ट और भाषा संस्कृत। अब ये पंडित टोडरमल जी ने, वो रहते थे जयपुर में, हम यहाँ बम्बे में रहते फिर भी कन्नड़ से कोई परिचय नहीं है, कोई बोलता है या कोई लिखा उठे तो कुछ नहीं समझते। तो ये संस्कृत भाषा और कन्नड़ लिपि उन्होंने पढ़ी नहीं, समझी अच्छी तरह से, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी देश भाषा में, तब की भाषा थी ढूंढारी। कल भी वो कार्तिकेयनो प्रेक्षा में आया था ढूंढाहड़ देश और वहां की ढूंढारी भाषा, तो उस देश भाषा में उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की। क्योंकि जनसामान्य इसको समझे, ये उनका हेतु था, सभी जीव इसको समझे। क्यों? संस्कृत और प्राकृत तो विशिष्ट जीव ही, विद्वान ही जानते थे। उस जमाने में उनके ऊपर बहुत टीका टिप्पणी भी हुई कि ग्रंथों को तो संस्कृत प्राकृत में ही रहना हो अच्छा है, क्योंकि उसकी गरिमा बनी रहती है, आप सादी भाषा में उसको बता दो तो ये ग्रंथ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो उनको ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि ग्रंथ तो होते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और वो आम जनता सभी समझे, ये उनकी बहुत अच्छी भावना थी। मूल ग्रंथ में बहुत सारे गणित के कठिन प्रकरण भी थे, उनको उन्होंने निकाल नहीं दिया मगर अलग से इकट्ठा किया और उसके गणित का चैप्टर अलग बनाया, और बहुत आसान ऐसे फॉर एग्जाम्पल करके छोटी छोटी फिगर्स लेके उन्होंने इस ग्रंथ में भी, समय ज्ञान चंद्रिका में भी कुछ गणित तो रखे हैं, परंतु वे हमारी समझ में आ जाए ऐसे है। तो ये महान कार्य उन्होंने हम आपके लिए किया है, हमें ऐसा लगता है कि साक्षात वे हमें पढ़ा रहे हैं, और हम भाग्यवान है कि यहाँ ये आद्योपांत स्वाध्याय कितनी बार हो रहा है अपने यहाँ पर? चार पांच बार तो हो चुका है हमने, संदृष्ट अधिकार के साथ भी। तो अभी हमने तो ढूंढारी में से पढ़ा था, अब आपके हाथ में यहाँ हिंदी भाषा टीका है तो उसके साथ पढ़ेंगे हम। तो केशववर्णी ने, हाँ देखो ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, थर्ड पेज निकालना पुस्तक का शुरू में, ये हिंदी अनुवाद करने के लिए हमें क्यों प्रेरणा मिली उसकी बात यहाँ कुछ लिखने की कोशिश है। देखो मिला अपना एक काव्य लिखा है, हाँ वही हुए आपके हाथ में है वही, हाँ अहो नेमिचंद्राचार्य का करुणा भाव अपार, चामुंड राय के प्रश्न पर लिखा गोमटसार। एक प्रश्न उन्होंने पूछा मगर उन्होंने पूरा ग्रंथ ही लिखा। कर्नाटक भाषा में चामुंड राय टीकाकार, केशववर्णी संस्कृत टीका है तदनुसार, उसके अनुसार, तद अनुसार संस्कृत टीका केशववर्णी ने लिखी। महाबुद्धिमान टोडरमल सद दृष्टि के धार, सम्यक दृष्टि थे और उनका सभी अनुयोगों का अच्छा अभ्यास था, ढूंढारी में ग्रंथ लिखा करी के अति विस्तार, उन्होंने केवल उसका भाषांतर नहीं किया है, भावार्थ लिखा है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम सुना बहु बार, पढ़ने को ललचाई में साहस करिए पार। जब 1992 में हम जयपुर में गए थे शिविर के लिए, तो वहां तो बहुत लेट पहुंचे हम, करना नियोग का कुछ वहां क्लास भी चलता था गुणस्थान का, और हम गए तभी तो बहुत 4-5 गुणस्थान हो चुके थे, फिर भी हम
दसवां
चल रहा था, फिर भी हम क्लास में भी बैठे, परीक्षा भी दी, पहला नंबर भी आया। हाँ, वहाँ ये बड़े बड़े ग्रंथ देखे करणान योग के, कुछ समझ में तो नहीं आता था, फिर भी ऐसी भावना हुई कि इसको हम क्यों न पढ़े। तो हमने अपने अपने लिए, उनका अलग मेरा अलग, तो दोनों तीनों ही भाग हम लेके आए यहाँ पर आते समय। तो साहस करके हमने उसको पढ़ना शुरू किया था। पति के साथ कर दिया ग्रंथ पठन को पार, पढ़ते गए करते गए चर्चा बारंबार। शुरू में हमें भी ऐसा लगा ये द्रव्यान योगी अच्छा है, क्योंकि आगे जैसे जाते हैं कुछ कुछ थोड़ी गणित की बातें आती है, तो ऐसा लगता है ये अपने अपने बस की बात नहीं है, छोड़ दे इसके, अपना द्रव्यान योग के ग्रंथ अच्छे। द्रव्यान योग का तब भी हमारा स्वाध्याय बहुत, हम सैकड़ों ग्रंथ हमने पढ़े भी थे, और ऐसी बात लगती थी कि करणान योग को हम पढ़े। तो दोनों ने एक दूसरे को साहस जुटाकर हम पढ़ते गए आगे।
कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आता है कि हाथ पैर लटपटाने लगते हैं बैठे हुए, कि क्या बात चल रही है, ये अपने बस की बात नहीं है, ऐसा लगता था हमें। लेकिन अभी तो ऐसा आसान लगता है कि जैसे मक्खन में से छुरी हम घुमाएं और वो आराम से बाहर निकले, वैसे हम इस ग्रंथों को पढ़कर उसके अंदर जो माल भरा हुआ है, अरे भाई मैं कहता हूँ 100% नहीं, कम से कम 0% तो मिलेगा कि नहीं, यानी 1/3, तीन है ना 100, तो 1/3 तो ख्याल में आएगा कि नहीं।
अरे सर, कुछ शब्द ऐसे थे कि जिनका अर्थ हमें नहीं मालूम था और कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मगर आप अभी हम आपको पढ़ाएंगे ना यहाँ पर, क्योंकि जब आगे पढ़ते जाते हैं तो वो शब्दों का अर्थ ख्याल में आने लगता है, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिल जाता है। तो अभी तो उन कहीं कोई ऐसे अनुत्तरित नहीं है कोई शब्द कि उसका अर्थ हमें ख्याल में नहीं आता, ऐसी तो बात नहीं है।
ये बात आपको बताने का प्रयोजन ये है कि आप बिल्कुल डगमगाए नहीं, और जो आज आए हैं वो आखिर तक आए, कुछ कारण लेके आ रहे ऐसा हो गया वैसा हो गया करके गैरहजर मत रहे,
और
उसमें नुकसान तो गैरहजर रहने वाले का ही होगा, और फायदा होगा तो सभी का होगा जो रोज आएंगे। ये समझने जैसी बात है, और कुछ पन्ने जाने के बाद तो ऐसा लगेगा कि सच में हमारे हाथ में बहुत बड़ी निधि प्राप्त हुई है।
और आप तो शुरू से पढ़ रहे हैं और बहुत आसान हो जाएगा। ये अश्विन भाई तो एकदम इसमें जो ज्ञान मार्ग है ना, तभी से शुरू किया था उन्होंने। हाँ, और फिर भी आज मास्टर हो गए करणान योग के। टोडरमल जी, पंडित मिले हमें परोक्ष गुरुवर, साक्षात सामने तो नहीं है पंडित जी, मगर ऐसे परोक्ष है ने? वो पहले हो चुके हैं और उनके ग्रंथ के द्वारा हम ऐसा लगता है उन्हीं से पढ़ रहे हैं। ज्ञान खजाना खोल दिया लूटे हम जीवर, पढ़ा पढ़ाया ग्रंथ को मैंने अनेकों बार, तब हमारी बुद्धि हुई छापे इसे दुबार। ये अवेलेबल नहीं था, ये ढूंढारी भाषा में भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे, हमारे पास तो थे मगर स्वाध्यायी या हम जहाँ जहाँ जाते थे लोग पूछते थे कि अभी मिलता नहीं, हम क्या करें, तो ऐसा लगा इसको फिर दोबारा छापे। पहले तो ढूंढारी में ही छापना शुरू, ने DTP भी शुरू कर दी थी, फिर वो लक्ष्मी बहन अपनी यहाँ आती ना, उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ढूंढारी में ला के दिया मुझे दिखाने के लिए कि हमारे घर में ये ग्रंथ भंडार में मिला मुझे। तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि यदि ढूंढारी में ही रहता तो इतना उसका प्रचार प्रसार नहीं हो जाता। अभी गुजराती मराठी सभी भाषाओं में ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अंग्रेजी में भी है, तो ऐसे यह भी ग्रंथ ढूंढारी में ही अभी तक। अभी इसको हिंदी बनाए तो हो सकता है कि अधिक लोग उसका लाभ उठा सके। तभी तो शाम को तो बता दिया कि मैं करूं, तो इनसे भी बात हुई और सुबह ऐसा लगा, अरे इतना बड़ा कार्य मेरे से कैसा होगा। फिर भी उनके प्रेरणा के कारण ढाड़स बढ़ाए उन्होंने और ये कार्य पूरा हुआ। तब हमारी बुद्धि हुई छापे इसे दुबार, मंद बुद्धि में अनुवाद का विषय अति गंभीर, टोडरमल जी के शब्दों ने दिया परंतु धीर। ये कौन से शब्द है वो अभी हम पीठिका में पढ़ेंगे। अभी जो हमने अब इंट्रोडक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं टोडरमल जी ने स्वयं लिखी है, तो वहीं से ख्याल में आ जाएगा कि लिखने से या सरल भाषा में बनाने से कैसा लाभ होता है लिखने वालों को भी और पढ़ने वालों को भी। उज्ज्वल मेरी मति हुई मैंने पाया सार, जीव कांड सब जीव पढ़े मोक्ष मार्ग सुधार।
देखो बात ऐसी हुई थी कि हमने तो 1000 कॉपी ही छपवाने का निर्णय लिया था, क्योंकि अधिक छापे तो रखने का बहुत बड़ा संकट खड़ा होता था, घर छोटा पुस्तकें रखे कहाँ। लेकिन मांग बढ़ती गई और हमने 1000 से बढ़ते 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 1600 प्रत छापी, और जो 700-800 पेजेस का ग्रंथ था उसको 1100 पेज हो गए। उसके 1100 पेजेस का ग्रंथ हो गया करीबन 1100, और 3 महीने के अंदर पूरी 1600 प्रतियां खत्म हो गई। यानी लोगों को इतना उसके प्रति उत्साह है। आगे
अभी हम यहाँ पहले पृष्ठ से सामान्य प्रकरण जहाँ लिखा है ना मंगलाचरण के नीचे, उसके पहले थोड़ा आप मंगलाचरण का अर्थ करेंगे। मंगलाचरण जो है ना, हाँ देखो इसमें शुरू में नेमीचंद, ये तो तीर्थंकर का भी नाम है। एक एक शब्द में दो दो अर्थ निकल रहे हैं। नेमीचंद नेमीनाथ भगवान भी है, और नेमीचंद ये जो गोमरसार के टीका है, जो गोमरसार के रचनाकार है, उनका नाम भी क्या है, नेमीचंद आचार्य, जिनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं। तो वंदो ज्ञानानंद कर नेमीचंद गुणकंद, ज्ञान और आनंद के आकर ने उसके जो समूह उसका घर, ऐसे जो नेमीचंद तीर्थंकर है गुणों के कंद है, कैसे वे माधव वंदिता। नेमीचंद तीर्थंकर हुए थे तो माधव वंदित ने इंद्रों के द्वारा पूजित थे, या माधव नाम कृष्ण का भी है, कृष्ण उनके चचेरे भाई थे तो उनके द्वारा वे वंदित थे पूजित थे। और नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती है, उनके भी शिष्य, उनका भी नाम माधव चंद्र त्रैविद्य देव, वो भी मुनिराज थे। तो इस तरह से इनका जिसको कहते हैं डबल मीनिंग है, नेमीचंद तीर्थंकर जो माधव यानी कृष्ण से वंदित थे, या नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिनके शिष्य का भी नाम माधव चंद्र था। पुण्य पयोनिधि नंद, पुण्य के निधि, ऐसे जो विवन पद के धारक नेमीचंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अब उसके बाद अरिहंत सिद्ध जिनवानी और फिर साधु, इनको नमस्कार किया है एक एक छंद में। पहले अरिहंत की बात करते हैं। दोष दहन गुण गहन घन, दोषों का दहन किया है यानी निर्दोष हुए हैं, यानी पूर्ण वीतरागी है। गुण गहन घन, और गुण कैसे प्रकट हुए है, जैसे अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, गुण प्रकट हुए परिपूर्ण रीति से, अमर्यादित ऐसी उनकी पूर्ण विकसित अवस्था हुई है। अरि करी हरि, अरि यानी शत्रु, उनको उन्होंने हरा दिया है। ऐसे जो अरहंत है वो कैसे है, स्वानुभूति रूपी रमणी यानी स्त्री में रमने वाले हैं। जगनायक यानी तीन भुवन के या त्रिलोक के जो नायक है मुख्य है, जयवंत वे जयवंत वर्तो, यहाँ उनको नमस्कार किया है अरिहंतों को। आगे सिद्धों को बताते हैं, सिद्ध कैसे, शुद्ध या शुद्ध, दोनों ही शुद्ध होना चाहिए ना, सिद्ध शुद्ध, शुद्ध शुद्ध भी आता है क्योंकि अपभ्रंश जैसे होता है। साधित सहज, सिद्ध भगवान जिन्होंने अपने शुद्ध स्वरूप को साध लिया है सहज रूप से, स्वरस सुधारस धार, स्वरस यानी आत्मिक रस रूपी जो सुधा, सुधा यानी अमृत, उसको धारण करने वाले हैं। समय सार शिव सर्वगत, यानी ये समय सार रूपी शुद्धात्मा उन्होंने पर्याय में वो प्रकट हुआ है। शिव यानी मोक्ष, सर्वगत यानी सब जगह पहुंचते नहीं, सबको जानते हैं, इसलिए उसको सर्वगत कहते हैं। नमत हो सुखकार, उनको नमस्कार करते हैं जो सुख को करने वाले हैं, क्योंकि हम उनका स्वरूप जानते हैं तो वैसे ही हम स्वयं है ऐसा जानकर उनके स्वरूप में लीन होना है, अपने आप में लीन होना, तो उसके द्वारा हमें सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए उन्हीं को सुख के करने वाले बताया। अब जैनी वाणी, वाणी कहो या बाणी कहो दोनों प्रकार से लिखते, जैनी वाणी यानी जो तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है, जिनवाणी जिसको हम कहते हैं, कैसे विविध विधि, विविध ने अनेक प्रकार से, वर्णत विश्व प्रमाण, अनेक प्रकार से विश्व का स्वरूप उसमें वर्णन आता है उसमें, और कैसी है, स्यात पद मुद्रित, स्यात पद से मुद्रित है, स्यात पद से अंकित है, वस्तु का स्वरूप कैसा है, अनेकांत स्वरूप है। हमने बहुत बार देखा ना, अनेक धर्मात्मक वस्तु है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी हमने देखी थी अनेकांत कैसा स्वरूप होता है, उसकी थोड़ी चर्चा आई थी, तो वस्तु को अनेकांत स्वरूप को बताने वाली ऐसी, कथनचित वस्तु नित्य है, कथनचित अनित्य है, आदि जो कथन आता है तो उसको कहते हैं वो स्यात पद के द्वारा मुद्रित है। अन्यमति कैसे है, वस्तु नित्य ही है कहेंगे, अनित्य ही है कहेंगे, परंतु जिनमत कैसा है कि स्याद पद के द्वारा वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से बताने वाला है। तो ये जिनवाणी कैसी है, स्यात पद से मुद्रित है। अहित हर, अहित का हरने वाली, अहित को हरने वाली है और हित को करने वाली, करहु सकल कल्याण, सबका कल्याण करती है, तो सुनने वालों का ही कल्याण करती होगी, क्योंकि भगवान के समो शरण में तो संगी पंचेंद्रिय जाएंगे, तो दूसरे जीवों का कल्याण कैसे होगा, बोलो हा? आपको भगवान की वाणी में पता चला कि 14 प्रकार के जीव समास क्या है, कौन से जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ अनंत जीव रहते हैं, कौन सी वनस्पति में कितने जीव है, तो हम क्या करते हैं समझने के बाद, जहाँ ज्यादा जीव है उसको मारते हैं, क्या करते हैं? हाँ, तो हम जीव जो समझदार है ना, संगी पंचेंद्रिय समझ रहे हैं कि यहाँ जीव है, तो उनकी हिंसा न हो इसलिए वो सावधान रहते हैं, तो इसलिए उनका भी कल्याण होता है। सके करहु सकल कल्याण, देखो ये आगे वाला जो है ना विशेषता है इसमें, क्या विशेषता है अमूल, आप कह सकते हैं, एक छंद जो है उसमें कुछ विशेषता है, जरा पढ़ो, मैं नमो न गन जैन जन, तेजल हाँ, एवरी अल्टरनेट वर्ड, वर्ड भी नहीं, लेटर अक्षर क्या है, न लिखा है, मैं न मो न ग न जय न ज न ज्ञान ध्यान धन लीन, फिर भी उसमें ऐसे नहीं केवल डालने के लिए, उसमें बहुत अर्थ भी गंभीर है। तो मैं नमो किसको, नगन जय न जन, नग्न कौन है, मुनिराज, तो मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ, कैसे वे ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन है, हम भी धन में लीन है, कमाने में रखने में बढ़ाने में, परंतु जो अपने हाथ की बात नहीं, पूर्व पुण्य के उदय के अनुसार मिलता है, परंतु ये जो मुनिराज जो है ज्ञान और ध्यान रूपी धन में लीन है। मैन मान बिन दान धन, मैन का अर्थ क्या है, मैन मान बिन, ये क्रोध मान आदि जो पाप मान आदि जो है कषाय के बिना, उसके बिना, और दान धन, दान ही उनका धन है। कौन सा? ये ज्ञान दान भी करे, मुख्यता तो उसी की बात है। एन हीन तन छीन, एन एने पाप से रहित है और तन एने काया कैसी है, कृश है, तो उसको छीन कहा। अब इस तरह से यहाँ अरिहंतों को, सिद्धों को, जिनवानी को, गुरुओं को नमस्कार करके यह विधि मंगल करणते, ये ग्रंथ को शुरू करने के पहले मंगल करने की पद्धति है। तो इस प्रकार मंगल करने से सब विधि मंगल होत, सब मंगल होता है, यानी ग्रंथ अच्छी तरह से पूर्ण होता है। होत उदंगल दूरी सब, ये सब उदंगल है, पाप दूर हो जाता है। तमजो भानु उद्योत, तम यानी अंधकार, भानु यानी सूर्य, सूर्य के उगने पर, जैसे उसका उद्योत होने पर, सूर्य के प्रकाश से जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही मंगल करने से सब पाप भाग जाते, दूर हो जाते। अब मंगलाचरण के अर्थ के बाद हम ग्रंथ की यहाँ शुरुआत करते हैं। यह है सामान्य प्रकरण, अथ मंगलाचरण द्वारा श्रीमद् गोमटसार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ। क्या कहते हैं? गोमटसार का दूसरा नाम क्या है? पंच संग्रह ग्रंथ। गोमटसार का ही दूसरा नाम है पंच संग्रह। हाँ, गोमट ने जिसको कहते हैं ना, सुंदर जिसको कहते हैं, हाँ सुंदर, दिखने में कैसा है, मराठी में आता है गोरा गोमटा, हाँ गोमट, गोमट लिखा है, गोमट भी कहीं के आता है, गोमट सा। वो घुमट नहीं, वो घुमट, हाँ वो गोल है, वो घुमट होता है, हाँ ये गोमट है। उसकी देश भाषा में टीका करने का उद्यम करता हूँ, उद्यम ने मैं अभी प्रयत्न कर रहा हूँ, यहाँ शुरुआत कर रहे टोडरमल जी। सो यह ग्रंथ समुद्र, क्या कहा इस ग्रंथ को? समुद्र जैसा, क्योंकि समुद्र जैसा गंभीर भी है और उतना ही बड़ा है। तो कहते हैं यह ग्रंथ समुद्र तो ऐसा है जो सातिशय बुद्धि बल संयुक्त जीवों के द्वारा भी, सातिशय बुद्धि है ना, कुशाग्र बुद्धि, ज्यादा जिसको इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धि जिनके है, ऐसे बुद्धि बल संयुक्त जीवों के द्वारा भी, यानी बुद्धिमान जीवों के द्वारा भी, जिसका अवगाहन होना दुर्लभ है, बुद्धिमान लोग भी इसको पढ़कर समझने के लिए, उनके लिए भी ये दुर्लभ है, ऐसा कहते हैं, कष्टप्रद है। और मैं मंदबुद्धि अर्थ प्रकाशने रूप, यानी उस ग्रंथ का अर्थ सबको समझाने की जो यहाँ उन्होंने ठान ली है, टीका करने की यहाँ जो शुरुआत की है, इसकी टीका करने का विचार कर रहा हूँ। ये पहले में पहले बता रहे हैं कि यहाँ बुद्धिमान जीवों का भी इस ग्रंथ के समझने में प्रवेश होना बहुत दुर्लभ है, और मैं तो इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसा स्वयं टोडरमल जी कह रहे हैं। सो यह विचार ऐसा हुआ जैसे कोई अपने मुख से जिनेन्द्र देव के सर्व गुण वर्णन करना चाहे, वह कैसे बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? कि गुण तो अनंत है और शब्द तो है संख्यात, और गुण कितने हैं? अनंत, असंख्यात भी नहीं, अनंत। तो कोई भी उसका वर्णन कैसे करे? कितने भव लगेंगे? अरे अनंत भव भी हो जाए तो भी उस अनंतता का पार नहीं आ जाए। क्यों नहीं हो जाएगा? एक समय में हम एक गुण कहेंगे और अनादि से अनंत काल तक कहते रहेंगे, तो क्या पार आएगा उसका कि नहीं आएगा? क्योंकि तीन काल के जितने समय है उससे आकाश द्रव्य के प्रदेश अनंत गुणे हैं और उससे एक एक द्रव्य में गुण अनंत गुणे हैं। ये सारी बात आने वाली गणित के द्वारा समझेंगे हम। अभी तक जो जो समझा है ना उसको प्रूफ के साथ यहाँ हम पढ़ेंगे। यहाँ कोई कहता है, पंडित टोडरमल जी की ये विशेषता है कि सामने वाला क्या इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेने वाला है उसको ये पहले ही सोच लेते हैं, या इसे उनको पूछने वाले कहने वाले भी मिले ही होंगे उस जमाने में भी, क्योंकि कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे से खींचने वाले भी होते हैं ना, या उसमें कुछ दोष दिखाने वाले भी मिलते हैं। तो इसलिए कहते यहाँ कोई कहता है नहीं बनता है तो उद्यम क्यों कर रहे हो। इतना डिफिकल्ट है और ये नहीं बन रहा है तो ये बात क्यों कर रहे हो, उसको कहते हैं। जैसे जिनेंद्र देव के सर्वगुण कहने की सामर्थ्य नहीं, तथापि भक्त पुरुष भक्ति के वश से अपनी बुद्धि अनुसार गुण वर्णन करता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो अपनी शक्ति अनुसार कवि उसमें भगवान के गुण की यानी गीत गाते हैं, तो भले सभी गुण तो हम नहीं कह सकते परंतु उसमें से कुछ गुणों का वर्णन तो जरूर कर सकते हैं। उसी प्रकार इस ग्रंथ का संपूर्ण अर्थ प्रकाशने की सामर्थ्य नहीं है, तथापि अनुराग के वश से मैं अपनी बुद्धि अनुसार गुण प्रकाशूंगा यानी अर्थ प्रकाशूंगा, उसका अर्थ कहूंगा। पुनश्च कोई कहता है कि अनुराग है तो अपनी बुद्धि अनुसार ग्रंथाभ्यास करो। क्या कहते हैं, यदि आपको ग्रंथ के प्रति इतना अनुराग है, प्रीति है, पढ़ने की बहुत चाह है तो स्वयं पढ़ो ना। मंद बुद्धियों को टीका करने का अधिकारी होना उचित नहीं है। आप स्वयं कह रहे हो कि मैं तो मंद बुद्धि हूं तो आप टीका क्यों कर रहे हो, स्वयं पढ़ लो बस। उसको कहते हैं, मैंने लिखा था ना पंडित जी के शब्दों ने धीर दिया मुझको, इसलिए वो स्वयं उन्होंने देश भाषा में टीका क्यों लिखी थी उसका यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहे। उसको कहते हैं, जिस प्रकार किसी विद्यालय में बहुत बालक पढ़ते हैं उनमें कोई बालक विशेष ज्ञान रहित है तथापि अन्य बालक से अधिक पढ़ा है। किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो कोई एक ज्यादा तो नहीं जानता है परंतु उससे भी कम जानने वाले अन्य बालक हैं, तो अन्य बालक से अधिक पढ़ा है सो अपने से कम पढ़ने वाले बालकों को अपने समान ज्ञान होने के अर्थ कुछ लिख देना आदि कार्य का अधिकारी होता है। उनको समझाना, उनको कुछ लिख के नोट्स देना आदि कोई बातें होती ना, स्कूल में भी हम देखते हैं जो कोई विषय जानता है तो उसके नोट्स अन्य भी ले लेते हैं और उसको भी ऐसा होता है कि बाकी भी समझ ले। उसी प्रकार मुझे विशेष ज्ञान नहीं है तथापि काल दोष से मुझसे भी मंद बुद्धि है और होंगे। ये हम आप सब होने वाले, उनको पता था तो कहते होंगे, उनके मेरे समान इस ग्रंथ का ज्ञान होने के लिए टीका करने का अधिकारी हुआ हूँ। यानी उन्होंने जितना जाना वे तो बहुत कुछ जानते थे, तो कहते हैं कि मुझसे भी कम जानने वाले है भी और होंगे भी, तो उनको इतना तो समझ में आए जितना मैं समझ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने यहाँ ग्रंथ लिखने का टीका करने का प्रयास किया है। पुनश्च कोई कहता है कि यह कार्य करने का विचार तो किया परंतु जैसे छोटा मनुष्य बड़ा कार्य करने का विचार करे वहां उस कार्य में भूल होती ही है, वहां वह हास्य का स्थान बन जाता है, लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे क्योंकि वो कुछ ना कुछ भूल कर बैठता है। वैसे तुम भी मंदबुद्धि होकर इस ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहे हो सो भूल होगी, वहां हास्य का स्थान बन जाओगे। तो इसलिए क्यों कर रहे हो, ऐसा प्रश्न कोई पूछता है उसको कहते हैं। यह तो सत्य है कि टोटोमोलॉजी की विशेषता है, जब आगे सामने वाला प्रश्न पूछता है तो पहले तू कहता है वो सत्य, परंतु परंतु कहकर वो अपनी बात बताएंगे। तो कहते यह तो सत्य है कि मैं बंद बुद्धि होकर ऐसे महान ग्रंथ की टीका करने का विचार कर रहा हूं, सो भूल तो होगी परंतु है ना, परंतु सज्जन हास्य नहीं करेंगे। जैसे औरों से अधिक पढ़ा हुआ बालक कहीं भूल करता है तब बड़े ऐसा विचार करते हैं कि बालक है, भूलेगा ही भूलेगा, परंतु अन्य बालकों से भला है। तो उसको तो हम, कोई बालक भूल भी करता है तो हम कैसे करते हैं उसको, और थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं, चीयर अप करते हैं ना, अच्छा है करो करो है, आगे बढ़ो, ऐसा विचार कर हास्य नहीं करते। और दुर्जनों को तो वो तो अच्छी बात देख के भी हंसी करते हैं। तो यहाँ सज्जनों की बात उठाई उन्होंने, वैसे मैं यहाँ कहीं भूल करूंगा वहां सज्जन पुरुष ऐसा विचार करेंगे कि मंदबुद्धि था सो भूले ही भूले, परंतु कितने ही अति मंदबुद्धियों से भला है ऐसा विचार कर हास्य नहीं करेंगे। सज्जन तो हास्य न करेंगे परंतु दुर्जन तो हास्य करेंगे, क्योंकि शंकाकार तो छोड़ने वाला ऐसे थोड़ी है। हाँ। उसको कहते हैं कि दुष्ट तो ऐसे ही है, जिनके हृदय में औरों के निर्दोष भले गुण भी विपरीत रूप ही भासते हैं। दुष्ट है, दुर्जन है, उनके तो दूसरों के गुण भी वो सुहाते नहीं उनको, उसमें से भी कुछ न कुछ बताएंगे ऐसी ये बात, यानी गलती निकालेंगे, खाली गलती के लिए नहीं, उनके गुण को भी वो विपरीत रूप से प्रस्तुत करेंगे, उनको वो विपरीत रूप ही भाषित होते हैं। सो उनके भय से जिसमें अपना हित हो ऐसे कार्य को कौन नहीं करेगा। पुनश्च कोई कहता है,
देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, यहाँ शंकाकार स्वयं पंडित जी ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का सामना किया है तो वो जानते हैं कि लोग क्या पूछने वाले हैं या पूछते हैं। तो यहाँ नहीं भी पूछा हो फिर भी अपने मन में ही ऐसी शंकाएं उठाकर हमारे शंका का निरसन करते हैं, यानी हमारे दिमाग में ऐसी कोई उल्टी पुल्टी बात न चले उसका पहले से ही निराकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि उन्होंने केवल ग्रंथों को नहीं पढ़ा था, समाज को अच्छी तरह से पढ़ा था। ये व्यवहाराभासी में हमने देखे ना प्रकरण में कैसा कैसा वर्णन करते हैं, तो समाज में किस किस पद्धति से लोग सोचने वाले हैं अलग अलग, तो उनको भली भांति उनसे परिचय था उनका। देखो पुनश्च कोई कहता है, पूर्व ग्रंथ थे ही, यानी पहले ये बहुत सारे ग्रंथ है ही, उनका अभ्यास करने कराने से ही हित होता है। मंद बुद्धियों द्वारा ग्रंथ की टीका करने की महंतता क्यों प्रकट करते हो। क्या कहते हैं, पहले जो ग्रंथ है, संस्कृत है, प्राकृत है, कुछ है, तो उसी को पढ़ा, स्वयं पढ़ो और दूसरों का भी उसका अभ्यास करा, तो उसको अपनी भाषा में उसके विस्तार से लिखने की क्या जरूरत थी। तो कहते मंद बुद्धियों द्वारा ग्रंथ की टीका करने की महंतता, महंतता ने बड़प्पन क्यों दिखा रहे हो, हाँ बड़प्पन जिसको कहते हैं, हाँ
यानी तुम खुद को बहुत बड़े समझते हो ऐसा,
ये मंद बुद्धि होकर भी ऐसा कार्य अपना ग्रेटनेस दिखाने के लिए कर रहे हो क्या, ऐसा कहते हैं। उसको कहते हैं ग्रंथ का अभ्यास करने से ग्रंथ की टीका रचना करने में उपयोग विशेष लगता है। क्या कहते हैं, स्वयं ग्रंथ पढ़ना और औरों को पढ़ाना, इसमें अपना उपयोग अधिक कंसंट्रेट होता है, विशेष स्थिरता होती है, और पढ़ाने से भी लिखने में और ज्यादा उसकी जिसको कहते हैं एकाग्रता हो जाती है। क्योंकि एक तो वो अर्थ सही उसमें आना चाहिए और दूसरी बात अपने से कोई भूल ना हो इसके बारे में बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि कि जिनवाने की बात है, इसमें से अपनी एक भूल होती है तो वो भूल की परंपरा चलती है, तो कहते ग्रंथ की टीका रचना करने में उपयोग विशेष लगता है, उपयोग विशेष लगता है ने, उसमें अधिक गहराई से सूक्ष्म उपयोग हो जाता है,
कॉन्सेंट्रेशन अधिक
कॉन्सेंट्रेशन होता है, अर्थ भी विशेष प्रतिभासित होता है। आपको लगता होगा कि यहाँ कोई स्वाध्याय कराते हैं तो हमको कितना अच्छा है, आपके लिए नहीं अच्छा, ये हमारे लिए अच्छा है। पढ़ाते समय उसका अर्थ विशेष प्रतिभासित होता है, हम स्वयं पढ़ जाए तो ऐसा लगता है ये समझ में आ गया, परंतु सामने वाले ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं या जब पढ़ाते हम स्लोली जाते हैं तो उसका अर्थ अपने को ही विशेष भाषित होता है। यानी ये तो आप लोगों का उपकार है कि आप इतने उत्साह से सामने आके बैठते हो, तो उसमें हमारा उपयोग भी लगता है उसमें, और ये अर्थ हमें अधिक गहराई से पता चल जाता है। पुनश्च अन्य जीवों को ग्रंथ अभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है। देखो उनके जमाने में भी दुर्लभ है, परंतु आज का ऐसा अच्छा, उस हिसाब से अच्छा जमाना आ गया है, ये इसके इसमें तो कांजी स्वामी है कारणभूत। उन्होंने तो स्वयं अभ्यास ग्रंथों का अभ्यास सालों भर, यानी कितने 45-45 दिन में तो 2 बार प्रवचन और 1 बार तत्व चर्चा, समय सार जैसे ग्रंथ पर 19-19 बार प्रवचन हुए, सभी प्रवचन सार सभी धवला पर भी उन्होंने किए थे, करणान योग के ग्रंथों पर भी उनके व्याख्यान हुए थे। तो आज के जमाने में ये बहुत सुलभ हुआ है, स्वाध्याय लोग कर भी रहे और रुचि से सुन भी रहे। तो कहते अन्य जीवों को ग्रंथ अभ्यास कराने का संयोग होना दुर्लभ है, यानी वक्ता के पास कैपेसिटी है मगर सामने उत्सुक जीव, जिज्ञासु जीव, या सही बात सुनने जैसे उसको धारण करे ऐसे जीव होना बहुत दुर्लभ बात है। और संयोग हो तो किसी ही जीव के अभ्यास होता है, सबको तो उतना अभ्यास नहीं होगा। अब ग्रंथ लिखित रूप से हो तो सामने की बात क्या, वो कितने पीढ़ी के बाद, जैसे हम आज इतने सालों बाद इन ग्रंथों का अभ्यास करके समझ सकते हैं, तो ग्रंथ लिखने से कितना बड़ा फायदा हो जाता है। तो किसी ही जीव के अभ्यास होता है, और ग्रंथ की टीका बने तो परंपरा अनेक जीवों को अर्थ का ज्ञान होता है। आज हम इतने साल बाद भी इसको इतनी चाव से रुचि से पढ़ रहे हैं, यही की बात नहीं, ये तो वंदो ज्ञानानंद का, ये तो मंगलाचरण ने दुबई में गाया, वहां भी करना नियोग की क्लास लिए, अमेरिका में लिए, जगह जगह, और उसके मूल आधार ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका का हमारा अभ्यास उसी से हुआ था। ये करणानुयोग नाम की पुस्तक जो है ना, करणानुयोग परिचय, ये इसी सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड के ऊपर से बनाई हुई है। हाँ, इसलिए अपना और अन्य जीवों का विशेष हित होने के लिए टीका करते हैं। ऐसा नहीं कहा कि मैं दूसरों के लिए उपकार के लिए करें, अपना उसमें हित है, अपना उपयोग उसमें सूक्ष्म होता है और अर्थ विशेष भाषित होता है, और परंपरा सामने वालों का तो कल्याण होता ही होता है। कितने ही पीढ़ी के बाद भी, जैसे हम सालों बाद, सैकड़ों साल बाद भी उन ग्रंथों का अभ्यास करने वाले जीव होते हैं। महंतता का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है, ये कोई अपने बढ़ाई दिखाने की बात है, बड़प्पन दिखाने की कोई बात ही नहीं उसमें। पुनश्च कोई कहता है कि इस कार्य में विशेष हित होता है सो सत्य, परंतु मंद बुद्धि के कारण कहीं भूल से अन्यथा अर्थ लिखने पर वहां महत पाप उपजने से अहित भी तो होता है। कहते इसके कारण विशेष हित होता है, उपयोग सूक्ष्म होता है, उपयोग इसी में लगता है, और फिर दूसरों का भी भला होता है, अर्थ विशेष भाषित होता है, परंतु भूल से गलत अर्थ अगर लिख दे तो पाप भी होगा कि नहीं, क्योंकि जिनवाणी से विरुद्ध लिखा गया तो पाप भी तो होगा, तो अहित भी तो होता है उससे, उसके कारण। उसको कहते हैं यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवल ही भगवान है, सर्वज्ञ ही सभी पदार्थों को जैसा है वैसा जानते हैं यथार्थ रीति से। दूसरों को ज्ञानावरण के क्षोभशम के अनुसार ज्ञान है, जिसका जितना जैसा ज्ञान का क्षोभशम है, जितना उघाड़ है, उसके अनुसार उसको ज्ञान होता है। उनको कोई अर्थ अन्यथा भी प्रतिभा से, परंतु जिन देव का ऐसा उपदेश है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों के वचन की प्रतीति से वह हट से, ये पूरा वाक्य पढ़ेंगे फिर इसका अर्थ देखेंगे, वह क्रोध मान माया लोभ से वह हास्य भयादिक से यदि अन्यथा श्रद्धान करे वह उपदेश दे तो वह महापापी है। क्या कहते हैं ये अन्यथा, इन्हें विपरीत उपदेश देने का प्रयोजन क्या है कि कुगुरु कुशास्त्र और कुदेव के जो प्रतीति करता है और उन्होंने बताया ही सत्य है ऐसा जो मानता है और उसके कारण वैसा लिखता है तो उसके तो पाप ही उत्पन्न होगा हठ के कारण। नहीं नहीं मैंने पहले ऐसा बताया था और अभी मैं वो उल्टा बताऊं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, तो हठ से भी वो विरुद्ध प्ररूपणा करता है। ये हठ कहो क्रोधमान माया, ये सारा कषाय के कारण, क्या हठ से क्रोधमान माया लोभ ये सब कषाय हो गए ना, हास्य और भयादिक से ये भी कषाय हो गए। यदि अन्यथा श्रद्धान करे वह उपदेश दे, भय से ने कि ऐसे अगर आप नहीं लिखेंगे तो हम आपको भला बहुत नुकसान हो जाएगा, अन्य कोई भी ऐसी बात है डरा कर भी, या समाज के भय से या लोग अपने को क्या कहेंगे इस भय से, जो खोटी प्ररूपणाएं अगर इसमें लिखेंगे तो वो कषाय के वश हो गया तो वहां तो जरूर पाप लगेगा, तो वह महापापी ही है। खाली केवल पापी ने महापापी, और विशेष ज्ञानवान गुरु के निमित्त बिना वह अपने विशेष क्षोभम बिना कोई सूक्ष्म अर्थ अन्यथा प्रतिभासित हो। क्या कहते हैं विशेष जानने वाले गुरु नहीं मिले, जैसे टोडरमल जी को दूसरे कोई पढ़ाने वाले नहीं मिले हैं, उन्होंने ग्रंथ में से ये सारा माल निकाला है, तो कहते कोई सूक्ष्म अर्थ के जानने में कोई थोड़ा अलग सी बात हो जाए या अपना विक्षोभम ज्यादा नहीं है इसलिए कोई अर्थ अन्यथा प्रतिभासित हो, और यह ऐसा जाने, यह यानी यह जीव ऐसा जाने कि जिनदेव का उपदेश ऐसा ही है। कर्णानयोग के बारे में उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये बात भगवान ने ऐसी बताई है, सात तत्वों के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई गुरु नहीं मिला और उसने कुछ भी मान लिया, ऐसी बात नहीं, वहां तो प्रयोजनभूत सात तत्वों में तो यथार्थ प्रतीति है ही, परंतु कर्णानयोग में कहीं सूक्ष्म अर्थ में कोई गणित में या कहीं भी कोई उसकी थोड़ी भी भूल हो जाती है तो उसने क्या माना है कि भगवान ने ऐसा कहा है। यदि ऐसा मानकर वो उस बात को वहां लिखता भी है या समझता है वही बात चालू रखता है, ऐसा जानकर कोई सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा श्रद्धान करे वह उपदेश दे तो इसको महत पाप नहीं होता, क्योंकि वो तो ऐसे कितनी बातें होती नहीं कि हाँ ऐसे कहे, जैसे हम पहले कहते थे अंतर्मूर्त में यानी 48 मिनट में आत्मा में स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है, अभी विशेष अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि वो काल जो है वो बहुत छोटा है तो अंतर्मूर्त परंतु 48 मिनट जितना बड़ा नहीं है, तो उसमें कुछ ऐसा बहुत महत पाप नहीं है, ख्याल में आता है ना, क्योंकि विशेष अभ्यास करने पर उसकी सूक्ष्मता ख्याल में आती है। वही ग्रंथ में भी आचार्य ने कहा है, इसी ग्रंथ में आगे चलकर निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है 27 नंबर की गाथा में, सम्मा इट्ठी जीवो वैठम पवयणम तु सद्दहदी सद्दहदी असभावम अजान मानो गुरु नियोगा। यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है वो जो श्रद्धान करता है, देखो ये 27 नंबर की गाथा निकालना वहीं पर अर्थ पढ़ेंगे हम, 80 नंबर के
80
देखो उसका भावार्थ पढ़ेंगे क्योंकि बाद में टीका तो जब ही आएंगे नंबर उस तभी पढ़ेंगे हम, भावार्थ इसकी का 27 नंबर की गाथा का भावार्थ, जो स्वयं को विशेष ज्ञान न होते हुए तथा मंदमति जैन गुरु से आप्तादिक का स्वरूप अन्यथा कहने पर और यह अरहंत की ऐसी ही आज्ञा है। इस तरह मानकर जो असत्य श्रद्धान करे तो भी सम्यक दृष्टि का अभाव नहीं होता, यानी उसके सम्यक दर्शन का अभ्यास नहीं होता, यह अभाव नहीं होता, अभाव नहीं होता, क्योंकि इसने तो अरहंत की आज्ञा जानकर प्रतीति की है। अरहंत भगवान की वाणी ऐसी ही है ऐसा समझकर उसने प्रतीति की थी, इसलिए उसका तो सम्यक दर्शन बना रहता है। परंतु आगे की गाथा में ऐसा लिखा है, अभी क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। परंतु कोई अन्य आचार्य या कोई साधर्मी उसको ग्रंथ बताकर आधार दिखाकर बताता है, तू जो ये कह रहा है ये सत्य नहीं है, ये देखो ये तो आगम प्रमाण है। अब यदि ऐसा प्रमाण दिखाने पर भी वो नहीं मानता है और अपने हट से पहले ही बातें चालू रखता है तो उसी समय वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। पहले वैसे ही श्रद्धा से वो सम्यक दृष्टि था, क्योंकि उसने माना था कि भगवान ने ऐसा बताया है। अब उसको आगम के आधार से समझाया जाता है कि ये ऐसा नहीं है, परंतु ये देखो ये सही बात है, तो ऐसा मत सोचिए, समझ ये तेरी गलती है, फिर भी वो हट करता है तो वो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ऐसी दो गाथाएं आगे ग्रंथ में ही आने वाली है। अब तीन पेज पर आते हैं। फिर पुनश्च कोई कहता है कि आपने विशेष ज्ञानी से ग्रंथ के यथार्थ सर्व अर्थ का निर्णय करके टीका करने का प्रारंभ क्यों नहीं किया? क्या कहते हैं आप? अभी जो टीका लिख रहे हो तो पहले किसी से पढ़ना था ना, विशेष ज्ञानी से, और फिर ये लिखना था, उसको कहते हैं काल दोष से केवली शुद्ध केवली का तो यहाँ अभाव ही हुआ। यहाँ तो कोई केवल ज्ञानी है नहीं है और ना ही शुद्ध केवली है, तथा विशेष ज्ञानी भी विरले ही पाए जाते हैं। जो कोई है तो वे दूर क्षेत्र में है, उनका संयोग दुर्लभ है। ज्ञानी की तो बात क्या, वहां तो धवला जैसे ग्रंथ भी दर्शन मात्र थे, दूर से दर्शन करने के। आज के ये हम ऐसे भाग्यवान है कि एक एक के हाथ में धवला ग्रंथ आ गए, नहीं तो वो जहां वो मूल प्रतियां थी ना वो तो दूर से उनका दर्शन होता था, क्योंकि इन्होंने भी तीन आदमी भेजे थे धवला के लिए, मगर वो दर्शन करके आ गए वापिस, उसमें भी एक आते आते मर गया था और उनको भी वापस लौटने में 6 महीने लगे थे। तो जिसमें कोई अर्थ उनका अधिक भाषित हो सकता था ऐसा उनका विचार था, मगर कहीं भी चूक नहीं है, क्योंकि हमने इसके बाद धवला जब पढ़े थे तो धवला का कितना ही अर्थ हम उनके द्वारा जाने, पहले समय ज्ञान चंद्रिका में जितना सरल हुआ था बाद में धवला पढ़ना हमारे लिए सुलभ होगा, यानी बिना धवला पढ़े भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसका स्पष्टीकरण किया। तो कहते हैं जो कोई ज्ञानी है विशेष ज्ञानी वे दूर क्षेत्र में है, उनका संयोग दुर्लभ है। पुनश्च आयु बुद्धि बल पराक्रम आदि तुच्छ रह गए हैं। तो छेने आयु कम हो गई अभी दिन ब दिन, जैसे पहले के जमाने में थे लंबे आयु वाले, अभी इतने नहीं देखने में आते। बुद्धि बल सब हीन हीन हो रहे हैं, इसलिए जितना बन सके उतना अर्थ का निर्णय किया। अवशेष जैसे हैं वैसे प्रमाण हैं। पुनश्च कोई कहता है कि आपने कहा वह सत्य, परंतु इस ग्रंथ में जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का कुछ उपाय भी है? उसको कहते हैं एक उपाय यह करते हैं, विशेष ज्ञानवान पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, इसलिए उनसे परोक्ष ही ऐसी विनती करता हूँ कि मैं मंद बुद्धि हूँ। देखो वो तो इतने ज्ञानवान थे फिर भी कैसे कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ मंद बुद्धि वाला हूँ, और उनके सामने विशेष ज्ञानवानी भी कोई नहीं थे, यदि होते तो उनके पास से वो जांच करवाते थे ना, यानी उनके कोई जिसके कहते ना परिचय में कोई ऐसे नहीं था कि उनसे ज्ञानी कोई जीव नहीं थे। तो मैं मंद बुद्धि हूँ, विशेष ज्ञान रहित हूँ, अविवेकी हूँ, शब्द न्याय गणित धार्मिक आदि ग्रंथों का मुझे विशेष अभ्यास नहीं है, इसलिए मैं शक्तिहीन हूँ, तथापि धर्मानुरागवश टीका करने का विचार किया। देखो वे तो स्वयं सम्यक दृष्टि और अनेक सैकड़ों ग्रंथों का अभ्यास भी था उनका, कर्णानियोग का नहीं द्रव्यानियोग का अच्छा गाढ़ा अभ्यास थे, इसलिए इसमें जहां जहां भूल हो अन्यथा अर्थ हो जाए वहां वहां मेरे ऊपर क्षमा करके उस अन्यथा अर्थ को दूर करके यथार्थ अर्थ लिखना, ये स्वयं विनती कर रहे हैं कि कहीं भूल ऐसी नजर में आती है तो उसको सुधार देना। इस प्रकार विनती करके जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का उपाय किया है। पुनश्च कोई कहता है, आपने टीका करने का विचार किया वह तो अच्छा किया, परंतु ऐसे महान ग्रंथ की टीका संस्कृत ही चाहिए। ये भाषावाद आ गया फिर बीच में है। भाषा में तो इसकी गंभीरता भाषित नहीं होती, भाषा है ना देशी भाषा, ये संस्कृत में कैसा अच्छा लगता है, वजनदार लगता है, तो ये क्या फालतू ऐसा लगता है कि भाषा है, देशी भाषा में ग्रंथ थोड़े ही होते हैं। उसको कहते हैं इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पहले से है ही। ये संस्कृत टीका उसका नाम क्या है, जीव तत्व प्रदीपिका, परंतु वहां संस्कृत गणित आमनाएं आदि के ज्ञान रहित जो मंद बुद्धि है उनका प्रवेश नहीं होता। इन्हें संस्कृत के गणित के वगैरह जो ज्ञाता है उन्हीं को उसका अर्थ भाषित होता है। आमना यानी ये जो परंपरा का एक अर्थ होता है आमना का, आगम की परंपरा से जो आगम की बात आई है, क्योंकि भावार्थ में इतने इन्होंने तो कितनी बातें खोल कर लिखी है। जैसे आगे भी संदृष्टि अधिकार है ना गणित का, तो उसमें एक एक सिंबल लेके उसका अर्थ समझाया, ऐसा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं समझाया, स्वयं समझकर उन्होंने वो सब लिख दिया है। पुनश्च यहाँ काल दोष से बुद्धि आदि के तुच्छ होने से संस्कृत आदि ज्ञान रहित जीव बहुत है। उनके जमाने में भी ये संस्कृत जानने वाले बहुत नहीं थे, तो कम थे। अभी आज के जमाने में कितने लोग संस्कृत जान रहे हैं। उन्हें इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान होने के लिए भाषा टीका करते हैं। इसलिए जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान युक्त है वे मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका से अर्थ धारण करेंगे। यानी जो संस्कृत जानने वाले हैं उनके लिए तो मूल ग्रंथ उपलब्ध है ही, जो नहीं जान रहे उनके लिए देश भाषा में टीका लिख रहे हैं। तथा जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित हैं वे इस भाषा टीका से अर्थ धारण करें। पुनश्च जो जीव संस्कृत आदि ज्ञान सहित है परंतु गणित आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव से, ये गणित आमनाय मेरे ख्याल से एक शब्द है क्या, गणित आमनाय यानी गणित संबंधी जो कोई ज्ञान है उसके अभाव से मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं पा सकते। क्या कहते हैं, जो संस्कृत गणित आदि का जिनके अच्छा अभ्यास है ज्ञान है वो तो मूल टीका पढ़ेंगे, जिनको संस्कृत का तो अभ्यास है परंतु गणित की जो परंपरा से जो बात चली आ रही है उसको अगर नहीं जानते हैं तो संस्कृत ग्रंथ पढ़कर भी उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गणित जो है ये जो यहाँ का गणित अलौकिक गणित उसकी अगर पता नहीं है कैसे पढ़ना कैसे क्या उसके सिंबल्स वगैरह होते हैं तो उसका उसमें संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं होगा, भले संस्कृत जानता है तो भी। तो गणित आमनाएं देख के ज्ञान के अभाव से मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं पा सकते। वे इस भाषा टीका से अर्थ को धारण करके, अभी ये गणित आदि का जो अर्थ है वो यहाँ से समझेंगे और बाद में संस्कृत से पढ़ना है तो मूल ग्रंथ तो है ही, मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका में प्रवेश करें। और यदि भाषा टीका से मूल ग्रंथ और संस्कृत टीका में अधिक अर्थ हो तो उसे जानने का अन्य उपाय बने सो करें। यानी ये भाषा टीका लिखने से संस्कृत जो टीकाएं हैं उनका कुछ मूल्य कम तो नहीं हो रहा है, उल्टा जो गणित नहीं जानते हैं वो इसमें से गणित जाने और फिर संस्कृत पढ़े तो उनके लिए और अधिक फायदा होगा। यहाँ कोई कहता है संस्कृत ज्ञान वालों का भाषा अभ्यास में अधिकार नहीं है, यानी संस्कृत भाषा जो है, यानी बड़े बड़े विद्वान है तो उनके लिए भाषा टीका पढ़ना योग्य नहीं है, अधिकार नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है, योग्य नहीं है, उसको कहते हैं। संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा वाचने से कोई दोष तो नहीं उत्पन्न होते, संस्कृत जो पढ़ते हैं या जानते हैं वो मराठी हिंदी पढ़ेंगे तो दोष लगेगा क्या? नहीं, क्यों नहीं लगना चाहिए? नहीं लगता है। हाँ, अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे ही करना, भाषा तो समझने के लिए है तो प्रयोजन जैसा, यानी ग्रंथ ख्याल में आए यही तो अपना प्रयोजन है। पहले अर्धमागधी आदि भाषा में महान ग्रंथ थे, पहले तो प्राकृत में ही सभी ग्रंथों की रचना थी। जब जीवों की बुद्धि की मंदता हुई तब संस्कृत आदि भाषा में ग्रंथ बने। अब जीवों के विशेष बुद्धि की मंदता हुई, यानी मंदता और अधिक हुई, इसलिए देशभाषा में ग्रंथ करने का विचार हुआ। अब ये उन्होंने देशभाषा ढूंढारी में लिखा, अभी वो भी नहीं समझ रहे तो हिंदी हुआ, अभी उसके आगे अंग्रेजी भी हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि हाँ, ये मिलिंद भाई गुजराती भी करेंगे क्यों? संस्कृत आदि का अर्थ भी अब भाषा द्वारा जीवों को समझाते हैं, क्योंकि संस्कृत श्लोक तो हम पढ़ लेते हैं, प्राकृत भी पढ़ते हैं, परंतु उसका अर्थ हमें ये भाषा टीका के आधार से देखना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत का इतना अभ्यास नहीं है। यहाँ भाषा द्वारा ही अर्थ लिखा है तो कुछ दोष नहीं है। हाँ, अभी यहीं पर हम रुकते हैं, बाकी बात कल। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। अरविंद भाई।